ओम शांति। हर वर्ष मीटिंग में जैसा हम एक सेशन रखते हैं भाई साहब के साथ, आप सबकी सुझाव और फीडबैक को लेकर के हम कॉन्फ्रेंस और कुछ मीटिंग्स की प्लान करते हैं। आज हमारे साथ भाई साहब हैं और भाई साहब को सुनने से पहले मैं कुछ स्लाइड्स आपके सामने रखूंगा, जिसमें सेशन का नाम रखा है मोडस ऑपरेंडी ऑफ स्पार्क एक्टिविटीज। और उसमें हम दो चीज को कवर करेंगे, एक कि हम 2015-16 में क्या क्या एक्टिविटीज किए हैं और कॉन्फ्रेंसेस क्या किए हैं, और ये एक्टिविटीज हम किस तरीके से करते हैं। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर है जो मोडस ऑपरेंडी स्पार्क विंग की कार्य करने की जो प्रणाली, जी लाइट बंद है, थोड़ा स्क्रीन में काफी चीज आ गया, मैं पढ़ लेता हूँ। स्पार्क की कार्य करने की जो प्रणाली है वो इस तरीके से है, जैसे स्पार्क एक रिसर्च विंग है ब्रह्मा कुमारीज के, जो राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत काम कर रहा है, और उसको हमने इस भाग में बांटा है, जैसे जोन सब जोन एक्टिविटीज होते हैं और साथ में लोकल चैप्टर्स एक्टिविटीज। और इसमें जो एक्टिविटीज की बात करते हैं, स्पार्क का मेन जो कोर फोकस है बाबा के ज्ञान और योग के ऊपर रिसर्च करना। इसके लिए जब इसकी स्थापना की गई थी, रिसर्च जो एरिया है उसको कई भागों में बांटा गया था, जो आपको उस दिन राजकुमार भाई दिखा रहे थे, जैसे राजयोगा लैब, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, नेचुरल साइंसेस, मेडिसिन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसे अलग अलग रिसर्च एरियाज हैं जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं बाबा के बच्चे। अगर कोई टॉपिक बनाते हैं रिसर्च करने के लिए, हम उसको प्रमोट करते हैं, इसको SIG कहते हैं। उसके बाद मीटिंग्स हेडक्वार्टर में होता है, लोकल लेवल पर होता है। नेक्स्ट जो है कॉन्फ्रेंस, हम इस कॉन्फ्रेंस पार्ट को आज कवर करेंगे, और जैसे डायलॉग वर्कशॉप भी करते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में, और जो भी रिजल्ट्स होते हैं उसको प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट के रूप में सबमिट किया जाता है, जो आपके सामने आप जब बाहर जाते होंगे वहां काउंटर पर रखे हुए हैं। और अभी इस बार अब भाई साहब से मिल रहे थे हम दोपहर में, सब टीचर बहने थे, एक सजेशन आया सबका, भाई साहब की इंटरेस्ट है कि हम लोग स्पार्क न्यूज लेटर निकाले जो ई न्यूज के फॉर्म में हो, प्रिंटिंग फॉर्म में ना हो, ई न्यूज के फॉर्म हो, जिसमें हम सभी के पास पहुंच सकते हैं उसके माध्यम से, वो भी चर्चा करेंगे। और साथ में खास करके
एक मिनट, इसके लिए न्यूज लेटर आपने ईमेल द्वारा ही जाएगा, पोस्ट करके नहीं जाएगा।
भाई साहब जो ई न्यूज होता है वो ईमेल के माध्यम से जाएगा, उसे प्रिंटिंग नहीं होगा उसमें, और कम्युनिकेशन पार्ट। और इसमें एक पार्ट मैं सबको बोलना चाहूंगा, आज बहने बोल रहे थे कि लोकल चैप्टर क्या होता है, अब सबके लिए ये है एक सिंपल लोकल चैप्टर माना, जो सेंटर और सब सेंटर जहां पे कम से कम 5 भाई बहने रेगुलर बैठेंगे, और मधुबन की हेडक्वार्टर्स की डायरेक्शन से कोई पुरुषार्थ की प्लानिंग करते हैं और मीटिंग्स करते हैं, और वहां के जो ग्रुप है उस ग्रुप को अगर टीचर बन सर्टिफाई करते हैं और वो एक लेटर भाई साहब के नाम से मधुबन भेजेंगे, तो भाई साहब की तरफ से आपको एक लेटर जाएगा आज ऑफिशियली लोकल चैप्टर के रूप में, जिसकी फॉर्मेट हमने यहां पे रखा है काउंटर पर, एक लेटर है जो भाई साहब के नाम से, और साथ में पीछे लोकल चैप्टर गाइडलाइंस है, आप उसमें जानकारी मिलेगी कि लोकल चैप्टर कैसे बनाते हैं, बनाने के बाद हमको क्या करना चाहिए। ये लोकल चैप्टर माना जो लोकल सेंटर्स के बीके भाई बहने टीचर बहन की परमिशन में मिलकर के कोई गहन पुरुषार्थ की बात करते हैं और साथ में हेडक्वार्टर से कनेक्ट होते हैं, उनको हम लोकल चैप्टर कहते हैं।
कम से कम कितनी बार मिलना
चाहिए? कम से कम मिनिमम 15 दिन में एक बार हो, अगर आपके समय नहीं है 1 महीने में तो एक बार होना ही चाहिए ड्यूरेशन। और जैसे कम्युनिकेशन की बात भाई साहब कह रहे थे, कल काफी डिस्कशन हो रहा था, मैं एक मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता हूं, कोई भी ईमेल आईडी बनाने के लिए चार्जेस देना होता ही नहीं, फ्री ईमेल आईडीज बनाए जाते हैं, जैसे आप याहू में जाइए या जीमेल में, वाईमेल में, रेडिफ मेल, बहुत सारे कंपनीज फ्री ऑफ कॉस्ट में आप बना सकते हैं। जैसे आप कभी क्लिक करेंगे उसमें एक होता है साइन अप के नाम से, आप साइन अप क्लिक करेंगे तो सारे डिटेल्स आते हैं, आपका नाम, आपकी टोटल आपको ब्यौरा देना होगा और सब उसमें लिखे होते हैं, और अब फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है। और मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी भाई बहन आए हैं सबके पास अपनी ईमेल आईडी होगी, अगर है तो हाथ उठाइए भाई सबके सामने। जी अब प्रसाद भाई कह रहे हैं कि एंड्रॉइड भी हो गया, एंड्रॉइड में ऑटोमेटिक जीमेल आता ही है, एंड्रॉइड मोबाइल में आप क्लिक करते ही गूगल मेल आता है उसमें ही, सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल हो गया है। वैसे भाई साहब यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेशन हुए हैं हमारे पास सभी ईमेल के थ्रू हुए हैं, हमने किसी को भी पोस्ट नहीं किया कोई प्रिंटिंग मटेरियल। और जो नेक्स्ट अपने देख रहे हैं विजिट स्पार्क वेबसाइट, हमने दो बनाया है, एक bkspark.in और एक bkspark.com। उसमें बहुत ज्यादा हमने नहीं डाला है, सिंपल इन्फॉर्मेशन स्पार्क के बारे में, और जब भी कोई इवेंट होते हैं उसको हम डाल देते हैं उसमें। वो राइट साइड में इवेंट कॉलम होता है, उसमें स्क्रॉल होता रहता है, हम नेक्स्ट दो महीने में तीन महीने में क्या प्रोग्राम करने वाले उसमें आता है। और जब भी कॉन्फ्रेंस होता है, मीटिंग होता है, वो मेन पेज में एक पीडीएफ फाइल दो तीन डाले रहते हैं, आप क्लिक करेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा उसके अंदर। और जब भी एक गूगल ग्रुप्स बनाया गया है स्पार्क की तरफ से, उसका नाम है स्पार्क विंग बीके गूगल ग्रुप्स .com, और उसमें ज्वाइन होने के लिए ये ईमेल आईडी दो आपके सामने है, bkspark@gmail.com spark@bkivb.org, इसमें आप हमें मेल कर सकते हैं। और आप बीके ये गलत हुआ है, बी बीच में ये नहीं है, बाय मिस्टेक टाइपिंग हो गया, वो बीके नॉट ए, आप इसको रेक्टिफाई कर लीजिए, bkspark@gmail.com। हाँ ये मैं बोल दिया, मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक। और spark@bkivb.org। और उसमें एक बात कहना चाहेंगे, जो गूगल ग्रुप्स में आपको मेल जाता है उसमें आप मेल रिप्लाई करेंगे रिप्लाई नहीं पहुंचेगा, आपको कोई भी मेल भेजना है इस दो ईमेल आईडी पे भेजना है आपको। ग्रुप्स में आपको मैसेज जाएगा, कोई पीडीएफ फाइल होता है, कोई पिक्चर होता है, कोई वीडियो होता है, वो आप उसको पढ़ने के लिए, आपकी जानकारी के लिए। लेकिन जब करेस्पोंडेंस करेंगे आप हमारे साथ हेडक्वार्टर के साथ, ये दो ईमेल आईडी में bkspark@gmail.com और spark@bkivb.org। सबको क्लियर हो गया कम्युनिकेशन? सब हाथ उठाएंगे एक साथ? और ये एक सिंपल बुलेट पॉइंट है जो हमने सेवाएं की है 2015-16 में, हेडक्वार्टर और बाहर जो हैदराबाद दो कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने किए हैं और पांच मीटिंग और कम से कम 50 से ज्यादा लोकल सेंटर पर मीटिंग्स हुए हैं। और स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन जो कल वेड़ी भाई बता रहे थे, आज ट्रेनिंग भी हुआ था, लगभग 50 से 60 प्लेसेस में ऐसे एग्जीबिशन कंडक्ट किए गए हैं। और इस वर्ष दो रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, कल जो कनिष्क भाई आ रहे हैं प्रेजेंट करेंगे कौन सी जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं स्पार्क रिसर्च पेपर, वो कल का प्रेजेंटेशन रहेगा। ये जो आपके सामने जो अभी हम डिस्कस करने वाले आप सबके साथ सामने, ये सर कॉन्फ्रेंस के लोगो हैं, जैसे आपने देखा होगा स्पार्क का लोगो तीन सर्कल, वैसे ये सर कॉन्फ्रेंस का लोगो है, स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्चर्स जो स्पार्क की तरफ से हम कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसके सिंपल डाटा आपके सामने है, 2003 से लेकर के 2015 तक ये सारे कॉन्फ्रेंस हुए हैं। 2003 में सबसे पहले हमने डायलॉग किया था बॉम्बे में, जिसकी थीम था साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी पार्टनर्स इन प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, जिसमें 400 पार्टिसिपेशन हुआ था, उसके अंतर्गत 150 पीएचडी थे, 50 एमफिल और 100 साइंटिस्ट थे। 2007 में पहली कॉन्फ्रेंस किया हम लोगों ने शांतिवन में, जिसमें 700 से ज्यादा पार्टिसिपेशन था और उसके अंतर्गत 100 पीएचडी, 60 एमफिल और 100 साइंटिस्ट थे। फिर 2008 में 500 पार्टिसिपेशन हुआ, 175 पीएचडी, 50 एमफिल, 85 साइंटिस्ट। 2009 की कॉन्फ्रेंस में 560 पार्टिसिपेशन हुए, जिसमें 182 पीएचडी, 77 एमफिल, 75 साइंटिस्ट। 2010 में 600 पार्टिसिपेशन हुआ, 326 पीएचडी, 36 एमफिल, 100 साइंटिस्ट। 2011 में 625 पार्टिसिपेशन, जिसमें 350 पीएचडी, 45 एमफिल, 90 साइंटिस्ट। 2012 में 750 पार्टिसिपेशन, 400 पीएचडी, 50 एमफिल, 105 साइंटिस्ट। 2013 में 900, जिसमें 425 पीएचडी, 55 एमफिल, 120 साइंटिस्ट। 2014 में हमने बड़ा कॉन्फ्रेंस किया था यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल में, जिसमें पार्टिसिपेशन था 1400 का, उसमें 500 पीएचडी, 100 एमफिल, 300 साइंटिस्ट थे। और अभी लास्ट में कॉन्फ्रेंस इसी हॉल में हुआ था 2015 में, जिसमें 600 पार्टिसिपेशन हुआ, 250 पीएचडी, 50 एमफिल और 200 साइंटिस्ट। ये सारा आपके सामने से रखा गया। एक समय था बाबा के घर में साइंटिस्ट को बुलाने के लिए मेहनत होता था, सोच रहे थे कि कैसे बुलाए, लेकिन आज ऐसा समय आया कि एक सभा में 200 से ज्यादा साइंटिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं। ये सब आप सबके सहयोग से हुआ है, इसलिए थैंक्स। अभी आपके सामने भाई साहब को हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो 10th SIR कॉन्फ्रेंस होगा, इससे पहले भाई साहब के साथ कोर ग्रुप की मीटिंग हुई थी, आपस में काफी मेल एक्सचेंज हुए और कोर ग्रुप तरफ से कुछ सजेशन दिए गए थे, जिसमें एक सिलेक्शन आया है जो इस बार कॉन्फ्रेंस का थीम जो रखा गया वो आपके सामने है। फिर हम भाई साहब से सुनना चाहेंगे और कुछ आप सभी लेन देन करेंगे, और जो आप सबके सुझाव होगा हम आगे की जो 10th SIR कॉन्फ्रेंस है उस हम सफल करेंगे। जैसे डेट फिक्स हुआ है 16 से 20 सितंबर 2016 ज्ञान सरोवर में होगा, उसमें एक कंस्ट्रेंट होता है पार्टिसिपेशन का, हम 400 से 500 गेस्ट को बुला सकते हैं, और इसलिए हम लोग क्वालिटी का ध्यान रखते हैं, और जिसके अंतर्गत ये रहेगा हमारा जो क्राइटेरिया गेस्ट को बुलाने का, पीएचडी होना चाहिए, आइदर वो साइंटिस्ट पोस्ट पर होते हैं, साइंटिस्ट में जैसे CDFGH होते हैं, और रिसर्च फ्रॉम एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अगर डॉक्टर्स को बुलाना है हम स्पेसिफिक क्या है, MD और MS, उसे बिलो डिग्री को हम नहीं बुलाते हैं, और BBIPs में जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, चेयरमैन, DG या तो डायरेक्टर्स होते हैं, उनको भी आज BBIPs बुलाते हैं, साथ में मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नर होते हैं, उनको भी बुलाते हैं कॉन्फ्रेंस में। ये टोटल विवरण है कॉन्फ्रेंस का, हम भाई साहब से सुनेंगे, जैसे हमें गाइडलाइन मिलेगी उसके आधार पर हम नेक्स्ट 10th SIR कॉन्फ्रेंस की पूरा प्लानिंग करेंगे। भाई साहब जी थोड़ा सुनाइए, उसके बाद फिर कुछ
अच्छा।
भाई साहब कह रहे हैं कि आप एक आपके सामने इस बार एक थीम रखा है, जैसे पावर ऑफ द पास्ट एंड फोर्स ऑफ द फ्यूचर, एक सजेस्टेड है, लेकिन हम चाहेंगे अगर आप इसके अतिरिक्त कोई सुझाव हो मेन थीम के लिए आप हमें दे सकते हैं। संजय भाई थोड़ा माइक ऑडियंस में देंगे।
ओम शांति। मेरा सिर्फ एक ये सजेशन है, एज आई अंडरस्टैंड पावर एंड फोर्स, तो इफ द टाइटल इज रिवर्स्ड टू फोर्स ऑफ द पास्ट पावर ऑफ द फ्यूचर, फोर्स एक्चुअली इज मोर फिजिकल टू एंड गिव द थ्रस्ट ए पुश, पावर इज विच इज आवर इनर स्ट्रेंथ एंड इनर पावर, एंड राजयोगा गिव्स अस दैट इनर पावर, सो दैट इज द फ्यूचर दैट वी लुकिंग एट, द फोर्स ऑफ द पास्ट, लर्निंग्स ऑफ द पास्ट एंड अदर एक्सपीरियंसेज ऑफ द पास्ट गिव्स अस दैट फोर्स एंड थ्रस्ट टू मूव फॉरवर्ड यू नो विद पावर ऑफ द फ्यूचर। So we generate the power of the future. We reverse the title is my suggestion.
Reverse the title only.
Yeah. As far as since the title is being presented, so my advice so far remains still the title.
आज के अजयक्त मुरली के अंदर भी power of the past जो होता है उसकी बात थी। एक air conditioning class में चलने वाले हैं और first class में चलने वाले, first class के अंदर चलने वाले को थोड़ा पिछले जन्मों का इफेक्ट होता ही है और इसलिए उसको दूर करना पड़ता है, और जो एयर कंडीशन में चलने वाले हैं उसको पावर ऑफ पास जो है वो अफेक्ट नहीं करता है। आज की अवजेक्ट मुरली सुननी होंगी आप सबने, जो तो ये सजेशन है, और भी कई नाम आ सकते हैं, दो पांच दस नाम आ जाए टाइटल का, उसके बाद उसको फाइनल करेंगे 31 तारीख को बाबा आएंगे, उस टाइम पर बाबा से पूछ भी ले सकते हैं।
बाबा कहते हैं जैसे आजकल जो वातावरण चल रहा है उस अनुसार हमें
सामने रखो,
आजकल जो दुनिया की परिस्थिति चल रही है और बाबा का जो डायरेक्शन है उस हिसाब से हमें पुरुषार्थ की गति को बहुत ही तीव्रता देनी है और उस हिसाब से ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस में आम व्यक्ति के लिए, पर्टिकुलरली दिस ग्रुप के लिए जो हमें शक्ति उनको प्रदान करनी है, उस हिसाब से टाइटल जो है पावर ऑफ पास्ट एंड फोर्स फॉर द फ्यूचर वो भी ठीक है, लेकिन इसमें
आप फिर भी ऐसा कर रहे हैं, देखो क्यों ऐसा हो जाता है।
मेरे हिसाब से जो साइंटिफिक ज्यादा अप्रोच उसमें यदि देंगे तो थोड़ा अच्छा होगा, और टाइटल यदि चाहें तो वैसे तो मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि साइंस के टॉपिक्स उसमें ज्यादा रखें और योग का साइंटिफिक वे से जो एक्सप्लेनेशन है वो भी ज्यादा रखें। यही मेरा सजेशन है। रोल ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज फॉर चेंजिंग the scientific community towards the future world or towards the golden age। इस तरीके से कुछ एम रख करके एक शॉर्ट करना होगा हमें।
और किसी को भी कहना हो
it can be thought of fruits of future based on past experiences।
kya bola fir se bolo।
fruits of future based on past experiences।
fruits of future based on past experiences। fruits of fruits of future based on past experiences।
तो प्रोग्राम करते हैं और हमने प्लान भी कर लिया, नेक्स्ट ईयर कॉन्फ्रेंस हॉल में करेंगे, वो डेट के लिए पूछ भी लिया है, बहन जी के थ्रू बात भी कर लिया है
जी।
और जैसे आज टीचर बहनों से बातचीत हो रहा था कि हम स्पार्क मीटिंग अभी यहाँ किए हैं और नेक्स्ट ईयर करेंगे कॉन्फ्रेंस हॉल में।
वो तो आज बात निकाली है, ईच वन टीच वन के हिसाब से सबके लिए बात निकाली है कि अगर एक तो क्या है 50-50% उन्होंने बताया कि 50% नए आते हैं 50% पुराने आते हैं, ऐसा कहा। तो इस प्रकार से जो भी आए हुए हैं अगले साल के लिए तो आप सब पुराने ही हो जाएंगे, कोई नया रहेगा ही नहीं। तो इसलिए सब जो नए जो रहेंगे, हम जो पुराने जो रहेंगे हो जाएंगे, इन सबको हमारी एक रिक्वेस्ट है कि जो हम लोगों ने 87 में यज्ञ के लिए सेवा में के लिए वृद्धि के लिए बनाया था प्रोग्राम ईच वन टीच वन, इस प्रकार से स्पार्क की इस मीटिंग के अंदर भी हम एक नियम बना रहे कि अगले साल हमारी जो मीटिंग होगी उसके पहले ऐसे तैयारी कर करके इस लोकल चैप्टर्स के द्वारा या तो अन्य कार्यक्रमों के द्वारा ऐसा तैयारी करके लावे तो जो अगले मीटिंग के अंदर आने के लिए लायक भी हो और आने के कारण उसका फायदा भी ले सकते। इस प्रकार से रखे ईच वन टीच वन हिसाब से जो हो जाएंगे, इस टाइम 650 आए हैं।
वो सजेस्ट कर रहे हैं एक टॉपिक हो सकता है साइकिल बिफोर गेटिंग रिसाइकिल, टॉपिक है साइकिल बिफोर गेटिंग रिसाइकिल।
ड्रामा का भविष्य जो है रिसाइकिल, रिसाइकिल की बात हम लोग जानते हैं, दुनिया वाले क्या जानते हैं? ऐसे जानते हैं ग्रीक फिलोसॉफी जो है प्लेटो जो है उसने कहा है वर्ल्ड साइकिल रिपीट आइडेंटिकली एट द एंड ऑफ एवरी 10,000 ईयर्स। इस प्रकार से प्लेटो ने बोला हुआ था, डायोस्टेनिस जो था उसने बोला हुआ था कि वर्ल्ड साइकिल रिपीट, बाकी और कोई फिलोसोफर ने इसके ऊपर बोला नहीं है न कहा हुआ है। तो साइकिल रिपीटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जो है उसके ऊपर मेहनत बहुत करनी पड़ती है, डिफिकल्ट भी है, और इतना डिफिकल्ट प्रोग्राम टॉपिक रखेंगे तो फिर मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, और लोग इतने कॉन्फ्रेंस में आकर के टॉपिक पर नहीं बोलेंगे, बोलने के लिए माइक मिलेगा तो कुछ भी बोलेंगे परंतु टॉपिक पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि साइकिल और ये साइकिल उसको मालूम ही नहीं है। हम जानते हैं कि ये ड्रामा जो है इट रिपीट्स एट द एंड ऑफ एवरी 5000 ईयर्स. आपको मालूम होगा 2012 में मायन कैलेंडर जो था, मैक्सिकन कैलेंडर जो था, उसके अंदर था कि 22 दिसंबर 2012 के बाद सृष्टि नहीं होगी, विनाश हो जाएगा. इस प्रकार का तो 2012 के अंदर प्रिडिक्शन था. उसके ऊपर आज तक जो है न्यूज चैनल आती है, उसने उसके ऊपर डिबेट रखी थी. एक साइंटिस्ट को और दूसरा एक धर्म नेता को बुलाया था और दोनों के सामने ये प्रश्न रखा कि 22 दिसंबर 2012 के बाद विनाश हो जाएगा तो उसके बाद 23 दिसंबर को क्या होगा, 23 दिसंबर से आगे क्या होगा. तो उसने पहले साइंटिस्ट को पूछा कि 22 दिसंबर को विनाश हो जाता है तो 23 दिसंबर को क्या होगा. तो साइंटिस्ट ने बताया कि मुझे तो मालूम नहीं है, क्योंकि हमारे जो भी डार्विन आदि जो भी हो गए, जिनके कहने के मुताबिक या जिनके रिसर्च के मुताबिक हम काम करते हैं, न्यूटन है, डार्विन है आदि आदि, तो उसके अंदर इन्होंने इस बात को कुछ रेफरेंस ही नहीं दिया. इसलिए साइंस इज एब्सोल्युटली ब्लैंक एज टू व्हाट विल हैपन आफ्टर 23rd of December 2012. फिर इन्होंने जो धर्म नेता था उसको पूछा कि आप क्या समझते हो 23 दिसंबर से क्या होगा. तो इन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय फिलोसॉफी है, उसके मुताबिक वर्ल्ड साइकिल रिपीट होता है. आइडेंटिकल नहीं मानते हैं वो सब, परंतु रिपीट होता है वो इतना तो मानते हैं. तो इसके कारण का सतयुग रहता द्वापर कलयुग के बाद फिर से सतयुग रहता द्वापर कलयुग, इस प्रकार का साइकिल आएगा. और फिर उसने जो एंकर था उसने पूछा आप किस ऑथोरिटी के आधार पर कहते हो. तो उसने 5-6 शास्त्रों की ऑथोरिटी बताई कि इनके अंदर कहने के हिसाब से इस प्रकार से कलयुग के बाद सतयुग आएगा, इस प्रकार की उसने बात कही. तो कहने के तात्पर्य यही है कि दुनिया के अंदर धर्म नेताएं भी मानते हैं, परंतु तो आइडेंटिकल नहीं मानते हैं. मैं जब अज्ञानी था तब मैं हमारे गुरु लोग आदि से पूछता था कि रामायण वही है और सृष्टि रामायण वही होते हुए भी अलग अलग रामायण में भी, बहुभूति का रामायण में अलग बातें और दूसरी रामायण में अलग बातें हैं, जैसे तुलसीकृत रामायण में अलग बातें हैं. इस प्रकार से अंदर इंसिडेंसीज अलग अलग है, इसका कारण क्या. तो इस प्रकार से कई बातें ऐसी होती है जो रिपीट ड्रामा रिपीट होता है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, परंतु हू रिपीट होता है. ये जो हमारी ब्रह्मा कुमारी की फिलोसॉफी है वो उसको दुनिया के बात अंदर मानते नहीं है. और कहते हैं अगर हू रिपीट होता है तो फिर पुरुषार्थ का स्थान क्या है, पुरुषार्थ की जरूरत नहीं. जो हु होता है 5000 वर्ष पहले हुआ वही अभी होगा तो क्या फायदा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे. तो इस प्रकार से रिपीटेशन की बात जो है बहुत कठिन बात है. आपको मालूम रहे हमारा यहाँ था मुडगल, क्या नाम था, मनिंदर सिंह मुडगल जो है मुडगल, उसके ऊपर हमने उसको स्कॉलरशिप दिया था. करीब 3.5 साल तक स्कॉलरशिप दिया, हर महीने 3,500 रूपये हम देते थे. और वो IIT कानपुर के अंदर वहां पर स्टडी करता था और इसके ऊपर रिसर्च करता था कि हूबहू कैसे रिपीट होता है. 3-3.5 साल के बाद वो अपना गाइड जो था उसको लेकर के यहाँ आया. हमने उनके गाइड के साथ बात किया तो उन्होंने कहा कि आप ये जो रिसर्च के ऊपर खर्च करते हो फालतू है, क्योंकि आप ये जो रिपीटेशन जो 100% रिपीटेशन है, 10,000 साइंटिस्ट इकट्ठे होकर के भी बात करे, 100-100 वर्ष तक बात करे तो भी 100% रिपीटेशन होता है वो बात सिद्ध नहीं हो सकती. इसलिए आप उसके ऊपर खर्च करना छोड़ दो. और इसके कारण हमने उनके जो स्कॉलरशिप थी वो बंद कर दिया, क्योंकि नेतर क्या करता था, वो बेचारा पैसा मिलता था 3,500 रूपये हर महीने, मौज में रहता था, खाना पीना खाता था, इस प्रकार से करता था. तो इसके कारण ये बात जो है रिपीटेशन की बात, हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, ट्राई किया प्रूव करने का, परंतु हमारे पास बाबा का ज्ञान के सिवाय उसके पास हमारे पास इतना कोई ठोस सबूत नहीं है. मैंने मामा से पूछा था कि एकदम 100% रिपीटेशन होता है तो कैसे हम कहें ये कौन सा कितना साइकिल अभी तक हो गया. तो मम्मा ने कहा ये कैसे मैं कह सकती हूँ, अभी कहूँ कि 144th साइकिल है तो अगले टाइम कहना पड़ेगा 145th साइकिल है. अगर 144 का 145 कहना पड़ा इसका मतलब ये हो गया कि हूबहू रिपीट नहीं हुआ. इसके कारण संख्या के बात में हम नहीं जाए तो ज्यादा अच्छा है. रिपीट होता है वही कहना पड़ेगा क्योंकि ये तो संख्या में लिमिटेशन आ जाता है. 144 अगले साल अगले टाइम 145 इस प्रकार से ही कहना पड़ेगा. तो इसलिए हूबहू रिपीटेशन की बात नहीं रहेगी. तो इसलिए इस प्रकार की बात को कालातीत जो है परमात्मा जो है वही बता सकता है कि भविष्य क्या है और भविष्य का कारोबार कैसे हो सकता है. तो इसलिए प्लीज हमारी रिपीटेशन की बात के ऊपर दुनिया के सामने हम रखेंगे तो मालूम नहीं हमारी कॉन्फ्रेंस का नतीजा क्या होगा. ताकि इस पार्क का जो लोगो बनाया हुआ है स्पिरिचुअलिटी एंड रिसर्चर्स यही है ना हमारा. ऐसा यार इसका टाइटल में भी कुछ चेंज करना हो तो भी आप बता सकते हैं. स्पिरिचुअलिटी एंड रिसर्चर्स के बदले में और कोई थीम रखना है तो भी बता सकते हैं. और उसका जो सिंबल बनाया हुआ है लोगो बनाया हुआ है उसके अंदर भी कोई डिजाइन में परिवर्तन करना है वो भी बता सकते हैं. क्योंकि 10th कॉन्फ्रेंस है हाँ तो इसीलिए नवीनता लाने की हो और किसी को टाइटल में थीम के में चेंज तो हर वर्ष का समय वो करते हैं परंतु हमारा कॉन्फ्रेंस का टाइटल जो है स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्चर्स उसको अंदर भी परिवर्तन करना कोई चाहता है कोई सजेशन अच्छा आता है तो हम करने के लिए तैयार है. वी आर नॉट बाउंड बाई ट्रेडिशन. आप कोई भी बता सकते हैं उसका लोगों में भी परिवर्तन करना चाहे तो कर सकते हैं. जो भी है आप सबके सामने जिसको कहते हैं हमारी पार्लियामेंट है उसके अंदर हमारे सामने आपके सामने ये बात रखी हुई है. आप जैसे नक्की करेंगे जैसे मैंने पहले कहा स्पार्क का भविष्य आपके हाथों में है.
ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है प्रैक्टिकल है.
अजय
मैंने कहा भाई साहब आप कह रहे हैं कि स्पार्क की भविष्य आप सबके हाथ में कहने के लिए नहीं है ये प्रैक्टिकल आप सबके हाथ में स्पार्क का भविष्य
प्रैक्टिकल में ही है. हमारा ज्ञान में जितनी समाजवाद कम्युनिज्म जो है सोशलिज्म है इतना दुनिया में किधर भी नहीं है. भक्ति मार्ग में तो गुरु कहेंगे मेरी बात को मानो इधर आप नर्क में जाएंगे क्या क्या करते रहते हैं. वहां तो डिक्टेटरशिप होती है गुरुओं की. हमारे यहाँ बाप परमात्मा बाप होते हुए भी बाप जो है हमको कितनी डेमोक्रेसी देती है सिखाता है आगे बढ़ने के लिए. आप पुरुषार्थ करो जो जितना पुरुषार्थ करेगा इतना आगे बढ़ेगा. तो जितना परमात्मा के ज्ञान के अंदर डेमोक्रेसी है इतनी दुनिया में किधर भी आपको डेमोक्रेसी नहीं बनेगी. मैंने वर्षों पहले लिखा था परमात्मा के ज्ञान के अंदर कैपिटलिज्म क्या है सोशलिज्म क्या है कम्युनिज्म क्या है और डिक्टेटरशिप भी है परमात्मा की. जैसे मन मना भो मतलब मुझे ही याद करो ये परमात्मा की डिक्टेटरशिप है. तो मेरे को याद करो दूसरे को याद करो तो क्या हो जाएगा वो आप सब जानते हैं. तो इसलिए वो भी उनके भी इस प्रकार की है सत्व प्रधान डिक्टेटरशिप है कि परमात्मा को याद करने से ही हमारी उन्नति हो सकती है. सौ उन्नति परमात्मा की याद से हो सकती है परमात्मा की शक्ति के याद की शक्ति के बल से ही हो सकती है. तो इस प्रकार से कहीं बेनिवोलेंट डिक्टेटरशिप जिसको कहते हैं उस प्रकार से भी हो सकता है. मतलब ज्ञान के अलग अलग पहलू है. कैपिटलिज्म जो है ज्ञान के अंदर वो भी है ज्ञान के अंदर सोशलिज्म भी है ज्ञान के अंदर कम्युनिज्म भी है. आपको मालूम होगा ट्रेडिशनली एक कहानी है कैपिटलिज्म सोशलिज्म और कम्युनिज्म के अंदर क्या फर्क है. वो कई कहानी के रूप में है कि एक छाता है बारिश आ रही है चार लोग जा रहे हैं चार लोग में से एक के हाथ में छाता है वही उसके नीचे छाता के नीचे रहता है तीन बाकी भीगते भीगते जा रहे हैं तो इट इज कैपिटलिज्म. सोशलिज्म में एक ही छाता के नीचे चारों इकट्ठे होकर के जितना हो सके इतना उसके अंदर छाता के नीचे जाने का प्रयत्न करे वो है सोशलिज्म. और कम्युनिज्म में छाता बंद करके चारों ही भिगता भिगते आगे चले जा रहे, वो है कम्युनिज्म। इस प्रकार से कहानियां बहुत अच्छी दुनिया के अंदर लोगों ने बनाई हुई है। पर मैं तो ऐसा मानता हूं कि हमारे ज्ञान में डेमोक्रेसी है और सोशलिज्म है, सबको चांस है आगे बढ़ने का। बाबा ज्ञान देता है परंतु पुरुषार्थ तो हमको ही करना पड़ेगा, जितना हम पुरुषार्थ करेंगे इतना ही आगे बढ़ेंगे। मैंने एक ज्ञानामृत में आर्टिकल में लिखा था, ये हमारी डिवाइन ओलंपिक्स है। डिवाइन ओलंपिक्स में लॉन्ग जंप एंड हाई जंप दोनों प्रकार की इसके अंदर होती है। लॉन्ग जंप में 5000 वर्ष का सर्कल में जितना जल्दी आते हैं और पूरा ही 5000 वर्ष कितना या उनसे कम, कितना एक जन्म कम दो जन्म कम, इस प्रकार के जो भी होगा वो लॉन्ग जंप में आता है। और हाई जंप जो है कितना ऊंचा पद प्राप्त करने का होता है वो है हाई जंप में। तो ये लॉन्ग जंप एंड हाई जंप दोनों ही इस प्रकार से हमारी ये डिवाइन ओलंपिक्स के अंदर है। हम सब इस ओलंपिक के अंदर खेलने वाले, आत्मा कहो पुरुषार्थी कहो जो भी कहो, हम है इसके अंदर।
वैसे कुछ जो अलग अलग सेशंस के टॉपिक सजेशन आए थे इसमें लिखा हूं मैं, जैसे कॉन्फ्रेंस के एक मेन थीम होता है और करीब 8 अलग अलग सेशंस रखे जाते हैं, प्लीनरी सेशन, पैनल डिस्कशन, तो ये कुछ टॉपिक सजेस्टेड थे जो आपके सबके सामने स्क्रीन पर हैं। और ये आइडिया के हिसाब से है, जैसे भाई साहब ने कहा कि आप अगर सजेशन देना हो बाद में भी लिखित रूप में दे सकते हैं, हम फिर कंपाइल करके कॉन्फ्रेंस की जो थीम है, क्योंकि हम कल तक फाइनल करेंगे फिर आप सबके सामने रखेंगे, ये कुछ सजेशन आए थे हमने कंपाइल करके आपके सामने रखा है। जैसे ये सेशंस के टॉपिक्स के बारे में है, एक सजेशन आया था स्टॉप नेग्लेक्टिंग स्टार्ट नर्चरिंग, एक्सपांड योर कंफर्ट जोन। आप ऐसे करिए, रखिए कलेक्ट करके, वो आप काउंटर पर दे दीजिएगा, जो भी लिखे हैं काउंटर पर दे दीजिए, हमारे बहने हैं। थर्ड टॉपिक सोशियो स्पिरिचुअल अप्रोच फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ। फोर्थ है ऑनलीस द ट्रू अप्रोच फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ। फिफ्थ है कॉरिडोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस। सिक्स्थ पैराडाइम शिफ्ट फॉर डूइंग टू बीइंग। सेवेंथ प्रोटेक्टिंग एंड सर्विंग एनवायरमेंट थ्रू स्पिरिचुअलिटी। एट इंटीग्रेटिंग स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। नाइन्थ सिनर्जी ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी ऑफ बेटर वर्ल्ड। ये कुछ आए थे, जैसे आपके सामने सैंपल ग्रुप में रखा है, अगर आपको इससे पढ़ते हुए और कुछ भी विचार आए और कोई टॉपिक आपके मन में आता
है दे सकते हैं सजेस्ट
जी,
और भी कोई टॉपिक
जी, मैं वही कह रहा हूँ, और भी टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हैं ताकि हम रात को बैठ के उसको फाइनल करेंगे और कल आपके सामने क्या फाइनल हुआ थीम और सेशंस टॉपिक्स आपके सामने रखा जाएगा। बहन जी, कॉन्फ्रेंस से संबंधित जो आगे होने वाले हैं, कुछ आपके सुझाव हो या कुछ आप सभा को कहना चाहते हैं आप कहिए जरूर। नहीं, आप बहनों से बात कर रहे थे कि सभी एक एक पीएचडी लेके आए, जरूर आप सबके सामने रखें। बहन जी, आपकी जो भी विचार हो।
शांति शांति। अगर हम प्रोग्राम में सफल होना चाहते हैं कि कॉन्फ्रेंस में अच्छी क्वालिटी आवे, वो सिर्फ जब कॉन्फ्रेंस का फोल्डर आपके हाथ में मिलता है तब हम जाके कांटेक्ट करें, तब नहीं होता है। मेरा बहनों से भी अनुरोध है कि वो कोई ना कोई प्रोग्राम, कोई ना कोई बहाना बहाने से उनको बुलाना चाहिए सेंटर पर। हमारा रेडीमेड स्टेज संडे और थर्सडे क्लास में ज्यादा भाई बहने होते हैं, तो कोई भी एक अच्छा लेवल के वीआईपी को बुलाएंगे, उनको थोड़ा सम्मान करके उनसे बोलवाएंगे कोई ना कोई बात लेके, तो इससे बहुत अच्छा उनका संपर्क रहेगा। फिर हम इनवाइट करते हैं तो पहले ही जानकारी होने के कारण वो लोग यहाँ आ पाएंगे। और जैसे विपिन भाई का एग्जाम्पल है कि 50 के बाद दो, ऐसे हम लोगों को भी बहुत ज्यादा रिसर्चर्स को अच्छी कांटेक्ट में रखते रखते तभी कुछ लोगों को हम यहाँ ला सकते हैं। तो इसमें बहनें और भाई जो भी इस फील्ड पे है उनको कुछ तो प्लान करना चाहिए। ओम शांति। और ये लोग थोड़ा सख्त भी होते हैं, इतना इजीली मानते नहीं है और हमको ये क्या जरूरत है, ऐसे ऐसे भावनाएं होती है इनमें, तो इसलिए इनको किसी न किसी रूप से ऐसे ऐसे ही बातें लेकर के हम लोग रिट्रीट है करके संडे थर्सडे को ही आप उसको बुला सकते हैं। ओम शांति।
बहन जी जैसे बोल रहे थे, भाई साहब भी मुझे कहा कि एक अच्छी बात है आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। जैसे हम स्पार्क लोकल चैप्टर कहते हैं, बीके मिलते हैं, आपस में पुरुषार्थ की बात करते हैं, तो वैसे वीआईपी आत्माओं की स्नेह मिलन का प्रोग्राम भी स्पार्क लोकल चैप्टर की तरफ से भी हो सकता है। श्री मधुबन में ही प्रोग्राम ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ आने से पहले अगर आप सेंटर में अपनी जगह पर प्रोग्राम करते हैं और बाबा को और अच्छी तरीके से जानते हो नजदीक से, मधुबन आने के लिए जल्दी रेडी होते हैं। हम स्नेह मिलन का प्रोग्राम भी रख सकते हैं, छोटे छोटे सेमिनार भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कई बार हमने जलगांव में भी किया है, हैदराबाद, बॉम्बे, पुणे और ऐसे भुवनेश्वर, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, उसमें हम देखते हैं कि जब भी इन्वाइट करते हैं लोग इजीली आते हैं, अपनी जगह पे होता है आ जाते हैं और ये संगठन को देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए राजी हो जाते हैं। हम स्नेह मिलन का भी प्रोग्राम कर सकते हैं,
एक दूसरा भी कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि यहाँ 400 आ सकते हैं, तो इसके कारण आप जानते हैं दिल्ली के अंदर ORCP है, हैदराबाद के अंदर शांति सरोवर भी है, रायपुर में भी है, हमारे मैसूर में भी है, बेंगलोर में भी है, कई जगह पर हमारे पास इस प्रकार से लोकल कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए मार्जिन है। तो इस प्रकार से डाइवर्सिफिकेशन, यहाँ फक्त आबू में ही कॉन्फ्रेंस करनी ऐसी जरूरत नहीं है, तो यही टॉपिक को लेकर के बॉम्बे में, आबू में भी हो, दिल्ली में भी हो, हैदराबाद में भी हो, यहाँ भी बेंगलोर में भी हो, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यही टॉपिक रिपीट हो जाएगा तो काम हो जाएगा, काम सफल हो जाएगा, मतलब संख्या ज्यादा हो सकती है, 400 400 400, 3-4 जगह पर कॉन्फ्रेंस करें तो 1600 लोग आ जाएंगे इस प्रकार। और इसके लिए जैसे श्रीकांत भाई ने बताया कि स्नेह मिलन इज द बेस्ट थिंग, स्नेह मिलन के अंदर लोगों को बुलाते रहते हैं तो आते हैं और आकर के फिर उसके ऊपर इसको रिसर्च करें, इसके ऊपर चर्चा करें, उसके उनके अंदर हमारी कॉन्फ्रेंस के बारे में इंटरेस्ट पैदा करें, इस प्रकार से करते रहेंगे तो इसका प्रभाव भी अच्छा हो सकता है। अंग्रेजी में कहते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, इस प्रकार से कोई भी एक डेलीगेट को यहाँ पर लाना हो तो पहली बार निमंत्रण दिया और सीधा आ जाएगा तो इतना प्राप्ति उसको नहीं होगी, परंतु वहाँ सेंटर पर आएगा, सेंटर पर आकर के हमारी ज्ञान की बातें थोड़ी सुने और इस प्रकार से ज्ञान से थोड़ा प्रभावित होकर के यहाँ आएगा तो उसका अच्छा फायदा रहता है।
ओम शांति। एक तो मैं श्रीकांत भाई से रिक्वेस्ट करिए कि हमारे हर साल कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंटेशन होते हैं, पीपल साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स जो प्रेजेंट देयर पेपर्स, वो एक अलग एजेंडे का पार्ट है, उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। और एक सजेशन हमने डिस्कस किया था, जैसे स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं ऐसे ही स्पार्क विजडम सर्कल्स, जैसे रिसर्चर इन एजुकेशन, रिसर्चर इन मेडिकल, रिसर्चर इन साइंस, रिसर्चर इन CSR, इन वेरियस रिसर्चर इन मैनेजमेंट, रिसर्चर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऐसे अलग अलग जोनल सर्कल्स भी बनाए जाएं और उनको उसका लेट देम बी अ प्लेटफॉर्म विच कैन बी ए प्लेटफॉर्म फॉर शेकिंग हैंड्स फॉर द PhD गाइड्स एज वेल एज फॉर द फेलोज। सो स्पार्क कैन क्रिएट दिस प्लेटफॉर्म एंड आफ्टर जनरेटिंग द रीजनल सच मीट्स देन वी कैन इन्वाइट वेरियस साइंटिस्ट फ्रॉम वेरियस डिफरेंट फील्ड्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एंड अदर एरियाज फॉर द सर कॉन्फ्रेंस। विल क्रिएट स्पेसिफिक इंटरेस्ट इन दैट स्पेसिफिक ग्रुप।
भाई साहब ऐसे हमारा अनुभव कि जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी है, जो जलगांव में नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ एक लिस्ट होती है, समझो यूनिवर्सिटी के अंदर 4-5 डिस्ट्रिक्ट होते हैं और सारे उनका जो जोन है उनकी लिस्ट होती है, 400-500 पीएचडी गाइड की लिस्ट उनके पास होती है, तो उनको मिलने से हमको रेडीमेड अपने 4-5 डिस्ट्रिक्ट में कितने पीएचडी गाइड्स है उनको हम कांटेक्ट करके उनके कांटेक्ट करके उनको प्रॉपर, जैसे आपने बोला कि क्वालिटी लानी चाहिए, जो पीएचडी जो है गाइड है उनको हम ऐसे ला सकते हैं इस युक्ति से कि यूनिवर्सिटी में जाए वो जो पर्सनल को मिले और वो लिस्ट लेकर आए, और उससे हम उनके एड्रेस भी होती है, वो एड्रेस में से उसको कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ओम सर,
जैसे प्रदीप भाई कह रहे थे कि पेपर प्रेजेंटेशन स्पार्क एक ऐसा कॉन्फ्रेंस बाबा के घर में होता है जहां पे हम पेपर इनवाइट करते हैं, और जो पीएचडी एमफिल या रिसर्चर्स होते हैं वो पेपर प्रेजेंटेशन के नाम से पार्टिसिपेट करते हैं। अगर उन्हें कहा जाए कि आप जहां प्रेजेंट करेंगे उसमें 400 से 500 पीएचडी और साइंटिस्ट होंगे ऑल इंडिया से, तो भी और भी इजीली एक्सेप्ट करते हैं, और उसमें हम सर्टिफिकेट देते हैं उनको पेपर प्रेजेंटेशन का, जिसमें उनको टीएडी भी मिलता है। ऐसे काफी पैसा वैसे हो रहा है 3 साल से, जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको सर्टिफिकेट देते हैं, उसका यूज करते हैं। एक बिहार में जितने यूनिवर्सिटी है वहां से आने वाले सभी प्रोफेसर को ये सर्टिफिकेट दिखाने से उनको सैलरी इंक्रीमेंट होता है, ये भी हुआ है तो 3-4 प्रोफेसर का, क्योंकि जब एक हो जाता है तो वो अपने आप गाइड करता है, 4-5 प्रोफेसर खुद अपने साथ लेकर के आता है, तो बाबा के घर के सर्टिफिकेट में अपना अपना महत्व है। तो इसलिए आप अगर ऐसे सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रेजेंटेशन होगा, ये एक तरीका है गाइड करने का, तो आप सबके सहयोग से हम नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस को सफल जरूर करेंगे। ठीक है, सभी सहयोग देंगे, एक आप। चलो
शिकंद भाई, कितने लोग प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट हो सकते
हैं? एक्चुअल पेपर हमारे पास तो 100 से ऊपर ज्यादा आता है, हमने लिखते हैं कि जो टॉपिक और थीम संबंधित होता है उनको सिलेक्ट करते हैं, और एक साथ 15 से 20 लोगों को हम देते हैं चांस प्रेजेंट करने के लिए। अगर क्वालिटी पेपर आएगा हम सेशन पर बढ़ाएंगे, 2 सेशन रख सकते हैं, डिपेंड करता है। कई बार ऐसे होते हैं कि अपने टेक्निकल टॉपिक लेके आते हैं, फिर हम उनसे गाइड, हम उनको करेस्पोंडेंस करते हैं कि हमारी ये स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस है जिसमें हम स्पिरिचुअल टचिंग देते हैं आपको, इसलिए आपकी पेपर स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों की कंबाइन से हो। और लोग भी काफी हम्बल होते हैं, वो जब उनको करेस्पोंडेंस करते हैं वो तुरंत पेपर चेंज करते हैं और उसी के आधार पर पेपर भी लिखते हैं। कई बार बिल्कुल जो ज्ञान को अच्छी तरीके से न मानने वाले और यहां आने के बाद पेपर की जो टेक्निकल सेंस को भी चेंज कर देते हैं, ऐसे भी हर बार कॉन्फ्रेंस में होता है। और उसके एग्जाम्पल अभी जो डीआरडीओ में लाइफ साइंस लैब के डॉक्टर मानस मंडल हैं, वो जो अपने प्रेजेंटेशन बनाए थे प्योर साइकोलॉजी का था, और भाई साहब से मिले, हम लोगों से मिले, उन्होंने अपने टॉपिक पूरा चेंज कर दिया। जब स्पार्क ऑफिस में आकर हमारी, अगर जो ऑफिस में गए होंगे ज्ञान सरोवर में, जो छत है उसमें पेंटिंग किया गया है, आप ऊपर से देखेंगे आपको लगेगा प्लानिटोरियम है, और जब वो नीचे बैठे, हमारे उद्घाटन हो रहा था रिसर्च लैब का, और उन्होंने कहने लगा कि ऐसा हो सकता है कि रिसर्च लैब और रिसर्च सेंटर कलरफुल हो। हम पहली बार देखा अपने लाइफ में कि रिसर्च सेंटर कलरफुल है, और अब देखने के बाद मेरा अपने साइकोलॉजिकल पैटर्न चेंज हो गया, मतलब मुझे कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद वो काफी हेल्प कर रहे हैं हमारी रिसर्च एक्टिविटीज को आगे ले जाने के लिए। तो कई बार ऐसे होता है लोग रेस्पॉन्स करेंगे नेगेटिव, लेकिन बाबा के घर में आने के बाद सब पॉजिटिव होते हैं। हमारा एक छोटा सा प्रयास हो कि कई आत्माओं का कल्याण होगा। तो इसी के साथ भाई सब कुछ और कहेंगे?
ये जो हमारा ऊपर का स्किलिंग जो है स्पार्क के ऑफिस के, वो हमारे डेविड भाई ने पेंट किया।
डेविड भाई जो अभी फर्स्ट डे उन्होंने म्यूजिक प्ले किया ना, तो वो एक आर्टिस्ट भी है, ब्रश पेंटिंग करते हैं, 100 भी पेंटिंग करते हैं। बोलो
भाई। जो मिशन थे, एक प्रपोजल रख रहा हूं। मोदी सर ने जब रिसर्च साइंटिस्ट की मीटिंग ली थी दिल्ली में, वहां पर आईआईटी प्रेसिडेंट्स, आईआईटी डायरेक्टर्स, बीआरसी, टीआईएफआर, टाटा कैंसर, एनआरएच, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उसके डायरेक्टर आए हुए थे, और उन्होंने साल भर में जितने रिसर्च पेपर पब्लिश किए उन्होंने वो मोदी साहब को दिखाए थे, उनके साइंटिफिक एडवाइजर को दिखाए थे। मोदी सर ने शुरू में ही कहा, आपने कितना रिसर्च किया इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे ये बताओ कि आपने कितने पेटेंट लाए हुए हैं, क्योंकि दुनिया में आप कितने बड़े साइंटिस्ट हो, आपके पेटेंट की जरिए से जाना जाता है। आज रिसर्च पेपर मेरे कॉलेज में से भी हर साल कम से कम 150 पब्लिश होते हैं। मैंने भी एक पूरे साल में गए साल 9 पेपर पब्लिश किए हुए हैं। रिसर्च पेपर पब्लिश करना अभी कॉमन बात हो गई है। फिर देखा गया कि भारत में 12 से 18 IITs है, 18 IITs ने मिलकर के इंडिया में 100 पेटेंट लाए हुए गए साल में। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो इंडिया में सबसे ज्यादा पेटेंट लाता है, जिन्होंने कई अब्जों रुपया रिसर्च के ऊपर खर्चा किया है, उन्होंने भी पूरे साल में केवल 200 पेटेंट फाइल किए हुए। और इंडिया से 800 ही पेटेंट फाइल हुए, जबकि इंडिया का रिसर्च के लिए खर्चा वर्ल्ड में 5 के अंदर है। मतलब गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही है कि रिसर्च के लिए खर्चा करने में हम पहले 5 के अंदर है, फिर भी हमारे पेटेंट बहुत कम है। जापान इतना छोटा देश है, जापान के 2500 पेटेंट है। हम लोग स्पार्क में एक सेशन ऐसा रख सकते हैं क्या कि जिसमें रिसर्च पेपर कैसे बनाया जाए या पेटेंट कैसे बनाया जाए, अपने भाई बहनों को उसका गाइडेंस मिलेगा, उस अनुसार अगर हम काम करना शुरू करेंगे तो हम वो कर सकते हैं। वास्तव में मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, एक साल से मैं थोड़ा काम में लग गया था और आज ही मैंने मेरा अकाउंट से फीस जमा हो गई है और मैंने एक पेटेंट स्पार्क के लिए फाइल किया हुआ है। जिस पेटेंट में मतलब अभी वो नेट पर आ जाएगा, हमारे दीदी जी भी मेरे साथ को ऑथर है। हम चाहते हैं कि हम जो रिसर्च करते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ के शुरुआत में अपना सारा धन यज्ञ को दिया था, यज्ञ में कई बीके भाई बहन है जो PhD गाइड्स है, उन्होंने भी कई रिसर्च किया हुआ है, क्यों ना हम अपने रिसर्च में से जो कोर पार्ट है वो या तो इम्पैक्ट फैक्टर 10 के ऊपर वाले जर्नल में पब्लिश करें स्पार्क के नाम पर, और हो सकता है उसके आगे जाके क्यों ना हम अपना रिसर्च पेटेंट के रूप में बाबा को अर्पित करने का एक विचार कर सकते हैं। ये मेरा प्रपोजल है। ओम शांति।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबने सुना। और इस एंड ऑफ द सेशन हम आप सबसे जरूर चिटकी में सजेशन लेना चाहेंगे, ठीक है।